नमस्कार, मैं रवीश कुमार। हम आज बात नौकरी की भी करेंगे और नेताजी की भी करेंगे, थोड़ी नेताजी की और थोड़ी नौकरी की। जब भी चुनाव आता है और स्वास्थ्य से लेकर रोजगार पर बात करने का अवसर मिलता है, नेता और मीडिया बहस की दिशा को इतिहास और धर्म की तरफ मोड़ देते हैं। किसी महापुरुष को याद करने के नाम पर खुद को महापुरुष साबित करने की होड़ शुरू हो जाती है। मूर्ति, स्मारक, पार्क इत्यादि के नाम रखने के बहाने किसी को याद किया जाने लगता है। ट्विटर पर मीम और टीवी चैनलों पर डिबेट के जरिए इतिहास की पढ़ाई शुरू हो जाती है। जहां पढ़ाई होनी चाहिए वहां ना तो शिक्षक हैं, ना ही लाइब्रेरी में किताबें। वोट के लिए इतिहास चालू टॉपिक हो गया है। नेता लोग पार्ट टाइम से अब फुल टाइम इतिहासकार बनने लगे हैं और इतिहास से एमए पास रिजर्व बैंक के गवर्नर। गलत इतिहास को सही करने के नाम पर अपने मन के हिसाब से गलत किए जा रहे हैं। इतिहास को सही करने के नाम पर आपके साथ जो गलत हो रहा है उसे समझना आपके बस की बात नहीं है और समझाना हमारे बस की भी बात नहीं है, क्योंकि इतिहास में किसी की भूमिका को समझने के लिए कम से कम एक दो किताबें तो पढ़ेंगे ही। जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को समझने के लिए 327 पन्नों की इस किताब को पढ़ना अनिवार्य है, जिसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सुगौतो ने लिखी है। सुगौतो नेताजी के भाई के वंशज हैं, इस परिवार की तीसरी पीढ़ी के हैं। इस किताब को लिखने के लिए उन्होंने 800 से अधिक किताबों, रिपोर्ट, पत्र संग्रहों वगैरह का अध्ययन किया है, तब जाकर सुभाष चंद्र बोस को समझने लायक एक किताब बनी है। उसी तरह रुद्रांशु मुखर्जी ने भी जब नेहरू और बोस के समानांतर जीवन पर यह किताब लिखी तो उसके लिए सौगाता बोस की किताब सहित करीब 50 और किताबों और अप्रकाशित रिपोर्ट का अध्ययन किया। हमने केवल दो किताबों का जिक्र किया है जिसे लिखने के लिए कई सौ किताबों और रिपोर्ट का अध्ययन किया गया है। क्या आपको लगता है कि किसी न्यूज एंकर के पास इतना टाइम है कि वह नेताजी पर दो दिन में किताबें पढ़ लें और आप दर्शकों के सामने नेताजी को सही संदर्भ में पेश कर दें? मैं ऐसा अपने बारे में दावा नहीं कर सकता, भले दूसरे एंकर कर सकते हो। कब तक आपको टीवी और नेता मिलकर बेवकूफ बनाते रहेंगे और कब तक आप इतिहास जानने के नाम पर टीवी पर होने वाले फटीचर किस्म के डिबेट को इतिहास की पढ़ाई समझते रहेंगे? मूर्ति और स्मारक से बस इतना पता चलता है कि सरकार ने किसी खास दिन पर किसी को याद किया, लेकिन क्या याद करने का यही एकमात्र तरीका बच गया है कि सबसे पहले घोषित करो कि फलाने को भुला दिया गया है, फिर उन्हें याद करने के लिए कहीं मूर्ति लगा दो या हॉल बनवा दो? इस होड़ में तमाम सरकारें जनता का सैकड़ों करोड़ों रुपया फूंके जा रही हैं, जिनका संबंध नायक को याद करने से ज्यादा खुद को बचाने से हो गया है। इस तरीके की खोज पहले राजनीतिक दलों ने की और अब आम जनता भी अपने आप करने लगी है। किसी की जयंती आती है तो सैकड़ों मीम बनने लग जाती है। मीम इसलिए बनती है ताकि आप किसी को भी कुछ सेकंड से ज्यादा याद ना करें। मीम का मनोविज्ञान इसी पर आधारित होता है कि मीम को देखते ही महानायक को याद ना करें बल्कि अगले को तुरंत फॉरवर्ड करें, इस बात को याद रखें। पूरी जयंती इसी में निकल जाती है। मीम को फॉरवर्ड करने में रचनात्मक होने के नाम पर किसी को याद करने की रचनात्मकता खत्म की जा रही है। याद करना मतलब अपनी मेमोरी को खाली करना और दूसरे की मेमोरी पर मीम का बोझ डाल देना हो गया है। मीम ने उस अपराध बोध से सभी को मुक्ति दिला दी है कि अंबेडकर हो या भगत सिंह हो, इन जैसे नायकों को जानने के लिए हजार पन्नों की किताबें नहीं पढ़नी पड़ेगी। सोशल मीडिया, मीडिया, राजनेता, सामाजिक कार्यकर्ता सब मिलकर एक भूला हुआ समाज गढ़ रहे हैं जिसका एक नाम जॉम्बी भी है। जयंती आते ही हर पक्ष की तरफ से मीम आने लगती है। सब उस मीम में अपने अपने नेताजी गढ़ने लगते हैं। कोई कार्टून बनाने लगता है, कोई लतीफा बनाने लगता है, कोई गालियां लिखने लगता है। एक नायक से दूसरे नायक को छोटा किया जा रहा है, भिड़ा दिया जा रहा है। इस पूरी प्रक्रिया में आप किसी नायक को याद करने के बहाने उससे या उसके समकक्ष से नफरत करने लगते हैं। उनकी क्या सहमतियां थीं, क्या असहमतियां थीं, इस पर कोई गौर नहीं करता बल्कि छोटा बड़ा करने के नाम पर मीम का एक मैच शुरू हो जाता है। इस तरह से भूल जाया जाता है कि जयंती किस लिए मना रहे हैं। आप गौर करेंगे कि किसी की जयंती के वक्त मीम की बाढ़ आ जाती है। अगले दिन उस बाढ़ की जगह किसी और की जयंती पर मीम की बाढ़ आ जाती है। इस तरह से हम याद करने के नाम पर पहले एक को मिटाते हैं, फिर अगले को मिटाते हैं। जयंती पर मीम भेजना और गुड मॉर्निंग मैसेज भेजना दोनों में कोई फर्क नहीं। राजनीति ने धर्म के अलावा इतिहास में अपना ठिकाना ढूंढ लिया है ताकि हंगामा मचता रहे। पिछले एक हफ्ते से आपको याद दिलाया जा रहा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भुला दिया गया है, जबकि आप जानते हैं कि स्कूलों में जब फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता होती है तब कोई ना कोई बच्चा सुभाष चंद्र बोस की पोशाक पहनकर जाता ही है, नेताजी बनकर जाता ही है। फिर कौन भूल गया नेताजी को। इसी दिल्ली में नेताजी के नाम पर कई सारी इमारतें और सड़कें हैं। दिल्ली में ही नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी है, दिल्ली में नेताजी के नाम पर नेताजी नगर है, नेताजी सुभाष स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क है, पीतमपुरा के पास नेताजी के नाम पर मेट्रो स्टेशन है, टिकरी गांव के पास आजाद हिंद ग्राम मेट्रो स्टेशन है, टिकरी गांव में ही आजाद हिंद ग्राम बनाया गया है। नेताजी के नाम पर अपनी नौकरी बचा रहे नेताओं से कहिए कि वे नौकरी पर बात करें, नौजवानों की नौकरी पर। स्कूल के दिनों में जब मास्टर जी क्लास से बाहर ताक रहे छात्र को पकड़ लेते थे तब हड़बड़ाकर बोलने लग जाता था, नहीं सर, फॉर्मूला सोच रहे थे, बाहर नहीं ताक रहे थे। वही हाल इन नेताओं का हो गया है। नौकरी की बात आते ही हड़बड़ाकर इतिहास बड़बड़ाने लग जाते हैं कि हम तो इतिहास पुरुष को इतिहास में जगह दिलाने में बिजी हैं। नौकरी के बारे में आप रवीश कुमार से पूछ लीजिए। मूर्ति और स्मारक के जरिए याद करने की राजनीति आज की नहीं है, लेकिन क्या यह कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? कितने लोग मेडिकल और इंजीनियरिंग की जगह इतिहास चुनते हैं पढ़ने के लिए? इसलिए नहीं चुनते हैं कि इतिहास से नौकरी नहीं मिलती है। लेकिन नेता इतिहास क्यों चुन रहे हैं? क्योंकि इसके नाम पर फालतू डिबेट से उनकी नौकरी बच रही है। कमाल है, जो इतिहास नौकरी नहीं दे सकता वही इतिहास नेताजी की नौकरी बचा रहा है। डू यू गेट माई पॉइंट? 2015 का साल था, गोदी मीडिया के स्क्रीन पर इस तरह के टॉपिक वाले डिबेट रहस्य रोमांच पैदा करने लगे। सदी का सबसे बड़ा राज, वाई वॉज द ट्रूथ बेरिड? नेताजी की जासूसी कर रही थी कांग्रेस? क्या 1968 तक जीवित थे सुभाष चंद्र बोस? नेताजी की 100 सीक्रेट फाइल दुनिया के सामने, बांग्ला किताब, रुद्राक्ष और सिगार का रहस्य, गुमनामी बाबा के बक्से का गुमनामी कनेक्शन, क्या इंदिरा गांधी ने नष्ट करवाई फाइलें? सीक्रेट फाइल नंबर एक में क्या था? न्यूज चैनलों के स्क्रीन पर इस तरह की हेडलाइन लगाकर आपके भीतर जिज्ञासा पैदा की गई और फरमाया गया। 2016 में जब नेताजी की फाइल सार्वजनिक हुई तब से ये तमाम बहसें गायब हो गईं। इस पूरी बहस के जरिए कांग्रेस और नेहरू को नेताजी का जानी दुश्मन बताया गया, जबकि INA का मुकदमा लड़ने के लिए नेहरू ने 25 साल बाद वकील का चोला पहना था। ये जानकारी भी हमें सुगाता बोस की किताब से मिली। नेहरू और नेताजी के संबंधों में आदर को माइनस कर केवल असहमतियों को हवा दी गई ताकि नेहरू से नफरत करने वाली जनता को और खुराक दी जा सके कि वह सही रास्ते पर है।
हमारे देश में राष्ट्रवाद एक बहुत बड़ी ताकत है और किसी भी राजनीतिक दल को या किसी भी नेता को जनता का वैलिडेशन हासिल करने के लिए जो उसकी प्राथमिक शर्त यह है कि वह राष्ट्रवादी है या नहीं। इसीलिए आप देख रहे हैं कि आज के समय में नेशनलिज्म और एंटी नेशनलिज्म का पूरा एक जो है बितंडा खड़ा किया गया। अब नायक हड़पने का सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है कि जो आजादी की लड़ाई के विभिन्न नेता हैं उनके बीच के वैचारिक मतभेदों को बढ़ा चढ़ा करके जो है उनको विकृत किया जाए और बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत किया जाए और फिर उनका आपस में दंगल करवा दिया जाए और जिसको आप चाहते हो कि हम इसे अप्रोप्रिएट करेंगे उसके लिए कहा जाए कि इनके साथ इतिहास में बहुत अन्याय हुआ था और इसलिए हम इस अन्याय को अभी फिलहाल दूर कर रहे हैं। तो इसलिए ये पूरे एक तरीके का नेशनलिस्ट प्रोजेक्ट है जो इनको नेशनलिस्ट वैलिडेशन के लिए ये पूरा जो मैं कहूंगा कि नायक हड़प का ये पैटर्न जो है ये बनाया गया है।
जैसे ही किसी की जयंती आती है एक अजीब किस्म की होड़ शुरू हो जाती है। सबसे पहले जिनकी जयंती आती है उन्हें भुला दिया गया घोषित किया जाता है। यह इसका सबसे पहला चरण है। जब तक यह सिद्ध नहीं होगा कि उन्हें भुला दिया गया है तब तक उनके याद करने में महानता नजर नहीं आएगी। ऐसी होड़ मच जाती है कि विरोधी भी मूर्तियां बनाने लग जाते हैं। दिसंबर 2019 में कोलकाता में निकाय चुनाव होने वाले थे। मूर्तियों और स्मारकों की होड़ में तृणमूल कांग्रेस भी उतर गई। उसके पार्षदों ने जहां जगह देखी वहां किसी न किसी की मूर्ति लगवानी शुरू कर दी। पूर्वी कोलकाता के फूल बागान इलाके में महात्मा गांधी और नेताजी की 35 फीट ऊंची मूर्ति बना दी गई। उस दौरान कोलकाता भर में बंगाल के इतिहास से जुड़े तमाम नायकों की मूर्तियां लगाने की खबरें आई थीं, लगाई भी गई थीं। रविन्द्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, चैतन्य प्रभु, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सिस्टर निवेदिता की मूर्तियां लगाई गई। कोलकाता में नेताजी के नाम पर मेट्रो स्टेशन है, सड़क है, एयरपोर्ट है, सुभाष चंद्र बोस इंडोर स्टेडियम है। इसी तरह देश भर में कहीं स्टेडियम है, कहीं मेडिकल कॉलेज है, तो कहीं सड़क है। आपको यह भी देखना है कि किसे याद किया जा रहा है। आजादी के आंदोलन के समय की कांग्रेस असहमतियों का जमावड़ा थी। गांधी भी जिस कांग्रेस के सदस्य थे उस कांग्रेस से असहमति रखते थे। असहमतियां रखना राष्ट्रीय राजनीति का अहम हिस्सा था, लेकिन आज उसके आधार पर हर नेता को कुछ खास नेताओं के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है, जबकि वे सब एक ही सपने के सहयात्री थे। नेताजी ने 1940 के अपने एक लेख में हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग को सांप्रदायिक संगठन बताया था। क्या कोई है जो नेताजी की मूर्ति के नीचे हिंदू महासभा और सांप्रदायिकता पर उनके विचार लिख दे और प्रधानमंत्री मोदी उस मूर्ति का लोकार्पण कर दें? बिना विचारों के नेताजी या अपने विचारों के नेताजी सबको अच्छे लग रहे हैं। आजादी की लड़ाई का इतिहास असहमतियों का भी इतिहास है। हर दो नेता एक दूसरे से अलग सोच रहा था। आपने कब सुना कि प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह सार्वजनिक रूप से अपनी असहमतियां दर्ज करा रहे हों, एक दूसरे को लेकर पत्र लिख रहे हों? नेहरू और पटेल की असहमतियां लिखित रूप में दर्ज हैं। क्या ये उस दौर की खूबसूरती नहीं थी? 8 अगस्त 1942 को जब भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पास हुआ, तब गांधी ने उन 13 लोगों का स्वागत दोस्त कहते हुए किया था जिन्होंने प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया था। कहा था कि उन्हें शर्मिंदा होने की भी जरूरत नहीं। आज जरा जरा सी बात पर विरोध कर दें तो यूएपीए लग सकता है, राजद्रोह हो सकता है और एक ईडी है जो रेड मारने आ सकती है। नेताजी को नेहरू और गांधी के विरोध में खड़ा कर उनकी असहमतियों को सीमित किया जा रहा है। उनका विरोध सांप्रदायिकता से भी था। क्या प्रधानमंत्री मोदी या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने किसी भी राजनीतिक भाषण में इसे पढ़ सकते हैं जो नेताजी ने 12 मई 1940 को बंगाल के झाड़ग्राम में कहा था, जिसके बारे में बताया जाता है कि 14 मई के आनंद बाजार पत्रिका में यह खबर छपी थी, जिसका जिक्र ममता बनर्जी ने पिछले साल 23 जनवरी को ही किया था। यह हिस्सा हिंदुस्तान टाइम्स में छपा है। ममता बनर्जी ने जो कोट किया है उसका हिंदी अनुवाद इस तरह है, सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि हिंदू महासभा ने त्रिशूलधारी सन्यासी और सन्यासिनों को वोट मांगने के लिए जुटा दिया है। त्रिशूल और भगवा लबादा देखते ही हिंदू सम्मान में सिर झुका देते हैं। धर्म का फायदा उठाकर इसे अपवित्र करते हुए हिंदू महासभा ने राजनीति में प्रवेश किया है। सभी हिंदुओं का कर्तव्य है कि इसकी निंदा करें, ऐसे गद्दारों को राष्ट्रीय जीवन से निकाल फेंकें, उनकी बातों पर कान ना दें। क्या यह बात धर्म का इस्तेमाल कर रही आजकल की राजनीति के लिए सही नहीं लगती है? आज वही हो रहा है। धर्म का नाम लेकर राजनीति में असली मुद्दों से बचा जा रहा है। चुनाव में धर्म का नाम लेने वालों को नेताजी का यह विचार बताया जाना चाहिए। अब आपको एक वेबसाइट पर ले जाता हूं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, भारत सरकार की ही वेबसाइट है। इस पर योजना आयोग के इतिहास से संबंधित एक डॉक्यूमेंट मिला है। इसका शीर्षक है सुभाष बोस पायनियर ऑफ इंडिया प्लानिंग। इनकी भूमिका में मधु दंडवते ने लिखा है कि फरवरी 1938 में हरिपुरा के कांग्रेस अधिवेशन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि आजाद भारत की सरकार का पहला काम होगा राष्ट्रीय योजना आयोग बनाना। नेताजी ने 1938 में योजना आयोग को लेकर राष्ट्रीय योजना कमेटी भी बना दी और नेहरू को उसका पहला चेयरमैन बना दिया। वही संस्था आगे चलकर आजाद भारत में योजना आयोग का रूप लेती है, जिसे मोदी सरकार ने भंग कर दिया। तब योजना आयोग को नेहरू से जोड़कर बताया गया, जबकि यह कल्पना सुभाष चंद्र बोस की थी, विरासत भी उन्हीं की। हाल ही में प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में हरिपुरा को याद किया है, लिखा है कि हरिपुरा अपने आप में इतिहास समेटे हुए है। उसी हरिपुरा में योजना आयोग का भी इतिहास है, जाइए और पढ़िए। कितने लोगों को नेहरू के खिलाफ आप खड़ा करेंगे? आप बोस बनाम गांधी भी नहीं कर सकते। बोस ने यूं ही गांधी को राष्ट्रपिता नहीं कहा। 23 जनवरी का दिन बड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन आप 23 जनवरी के नाम पर 30 जनवरी से पीछा नहीं छुड़ा सकते। दरअसल हत्या का आरोप इतना बड़ा है और ऐसे व्यक्ति की हत्या का आरोप है कि पहली जनवरी से ही 30 जनवरी आने लगती है, हर दिन आती है। गांधी की हत्या एक व्यक्ति ने नहीं की थी, उस हत्या के लिए उस व्यक्ति को एक विचारधारा ने तैयार किया था, आप उसके बारे में जानते हैं। 30 जनवरी से भागने के लिए पूरी धरती को झूठ और मूर्तियों से भर देंगे, तब भी 30 जनवरी का सच सामने आएगा और वो दिन भी आएगा, पूछेगा कि गांधी को किसने मारा, कौन लोग गांधी को मारने वालों के साथ हमेशा खड़े रहते हैं और उनका इतिहास कहां जाता है, क्या है। ये दो पोस्टर हैं यूपी सरकार के। एक में सरकार ने 5 साल के दौरान 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया है, एक दूसरे विज्ञापन में 4.5 लाख सरकारी नौकरियां देने का दावा किया गया है। सवाल उठ रहे हैं कि 4.5 लाख भर्तियों का विज्ञापन कब निकला, कहां निकला, किस विभाग में भर्तियां हुई, इसका जवाब नहीं आ रहा है। 2 करोड़ रोजगार किसे मिला, इसका भी जवाब नहीं मिल रहा है। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 70 लाख रोजगार देने का वादा किया था अपने संकल्प पत्र में। इस वादे में साफ नहीं किया था कि कितनी सरकारी नौकरियां देंगे और कितनी प्राइवेट, लेकिन संख्या 70 लाख बताई थी। 23 जुलाई 2018 को योगी आदित्यनाथ ने अपना ही बयान ट्वीट किया कि अगले 3 साल में 2 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी।
उत्तर प्रदेश के 2 करोड़ नौजवानों को उत्तर प्रदेश के अंदर ही नौकरी, रोजगार और स्वावलंबन के कार्यक्रम के साथ जोड़ करके उत्तर प्रदेश जो कभी विकास के पैमाने पर सबसे पिछड़ा माना जाता था, आज उत्तर प्रदेश आने वाले समय में देश के अग्रणी प्रदेशों की श्रेणी में खड़ा होकर के देश को एक बार पुनः दिशा देता हुआ दिखाई देगा।
अब यूपी सरकार के उद्योग मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह कह रहे हैं कि यूपी सरकार ने 2 करोड़ लोगों को रोजगार दे दिया है। लघु एवं मझोले उद्योग के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि योगी सरकार में बिजली भी है और नौकरी भी, इसके लिए इन्वेस्टमेंट जरूरी होता है। केवल नोएडा में ही 17,927 करोड़ का निवेश हुआ है, अकेले उद्योग से ही 2 करोड़ से ज्यादा नौकरियां दिलाई हैं और बबुआ तुम शेख चिल्ली की तरह युवाओं को 22 लाख दिलाने का झांसा दे रहे हो। सिद्धार्थनाथ सिंह कह रहे हैं कि 5 साल में 2 करोड़ रोजगार दिए गए हैं अकेले उद्योग से। उन्हीं की पार्टी के सांसद वरुण गांधी ने हिंदी अंग्रेजी के अखबारों में लेख लिखा है कि यूपी और देश में बेरोजगारी विस्फोटक हो चुकी है। 5 दिन पहले छपे वरुण गांधी के लेख का पहला पैराग्राफ इस तरह से शुरू होता है और मैं पढ़ रहा हूं कि देश में दिसंबर में बेरोजगारी दर 4 महीने के उच्च स्तर 7.9% पर पहुंच गई, जिसमें शहरी बेरोजगारी बढ़कर 9.3% हो गई। यह दिखाता है कि कैसे निराशाजनक अर्थव्यवस्था और महामारी ने भारतीयों को बुरी तरह प्रभावित किया है। चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश में बीते 5 वर्षों में स्थिति सबसे बदतर हुई है। ये वरुण गांधी लिख रहे हैं जो बीजेपी के सांसद हैं। वरुण लिखते हैं कि वहां दिसंबर 2016 से दिसंबर 2021 के बीच कार्यरत लोगों की संख्या 38.5% से घटकर 32.8% रह गई है। जाहिर है बेरोजगारी की दर पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ी है। लगता है कि हम अपने देश की जनसांख्यिकीय क्षमता को बर्बाद कर रहे हैं। अमर उजाला में यह छपा है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के महेश व्यास ने पिछले प्राइम टाइम में कहा था कि उत्तर प्रदेश में काम ही नहीं मिल रहा है, इस वजह से बेरोजगारों ने मार्केट में जाकर काम मांगना बंद कर दिया है। 5 जनवरी के प्राइम टाइम का हिस्सा हम दिखाना चाहते हैं, यह एपिसोड आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। इसमें हमने यूपी सरकार की एक वेबसाइट के बारे में बताया था। यूपी सरकार ने रोजगार संगम नाम की एक वेबसाइट बनाई है जहां नौकरियां देने वाली कंपनी और नौकरी मांगने वाले नौजवान एक प्लेटफॉर्म पर आ सकते हैं। आज यानी 24 जनवरी का डेटा बता रहा है कि 41 लाख लोग नौकरी मांग रहे हैं, लेकिन यहां पर जो वैकेंसी है उसकी संख्या मात्र 1256 है। कितनी कम नौकरियां हैं और कितने ज्यादा लोग काम मांग रहे हैं। लेकिन यूपी सरकार ने इस तरह की होर्डिंग लगा दी है कि स्थानीय उद्योग एवं कला के प्रोत्साहन से 2 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार दिया है। कोई डिटेल नहीं कि उद्योग और कला के प्रोत्साहन से 2 करोड़ लोगों को कहां रोजगार मिला है, किस सेक्टर में मिला है, कैसा काम मिला है, कैसी सैलरी मिली है, कुछ पता नहीं। चुनाव आयोग जब 70-80 करोड़ नागरिकों का मतदान पत्र बना सकता है, इलेक्टोरल रोल बना सकता है, तो सरकार उन युवाओं का रोजगार पत्र क्यों नहीं बना सकती है जिन्हें रोजगार मिला है? हम चुनाव आयोग की साइट से पहचान पत्रों की पुष्टि कर सकते हैं, तो फिर रोजगार के आंकड़ों के लिए ऐसी सुविधा क्यों नहीं हो सकती? नेशनल रजिस्टर बनाने के नाम पर 1600 करोड़ फूंक दिए गए असम में और आज तक उसका आता पता नहीं है। लेकिन बेरोजगारों का रजिस्टर आज तक नहीं बन पाया क्योंकि पोल खुल जाएगी। आचार संहिता लागू होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी में कई सरकारी कार्यक्रम किए। इन कार्यक्रमों में लोगों को बुलाने के लिए सरकारी बसों का इस्तेमाल किया गया। आम जनता के रूट से बसों को उठाकर उस रूट पर लगाया गया जहां प्रधानमंत्री की सभा होने वाली थी। इन बसों में उन लोगों को बिठाकर लाया गया जिन्हें किसी न किसी सरकारी योजना का लाभ मिला है। इनका एक नया नाम दिया गया, लाभार्थी। कहीं सुनने को नहीं मिला कि लाभार्थियों में वे लोग भी जो उस 2 करोड़ में शामिल है जिन्हें रोजगार मिला है, या 4.5 लाख सरकारी कर्मचारी जिन्हें नौकरी मिली। जिस किसी को 1 किलो नून, 1 किलो तेल और 1 किलो दाल फ्री में मिला है उसे लाभार्थी बनाकर प्रधानमंत्री की सभा में खाली कुर्सियों को भरा जा सकता था, तो फिर 2 करोड़ रोजगार पाने वालों को भी बुलाया जा सकता था और भी रैली बड़ी हो जाती। अगर 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है तब भी यूपी सरकार अपने विज्ञापन में 15 करोड़ गरीब क्यों बताती है? 24 करोड़ की आबादी में 15 करोड़ गरीब हैं जिन्हें महीने में 2 बार फ्री का राशन दिया जा रहा है। क्या 2 करोड़ रोजगार पाने वाले इस 15 करोड़ में हैं या उससे बाहर निकल गए? एक परिवार में 5 सदस्य माने जाते हैं। अगर यूपी में 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है तो इस हिसाब से 10 करोड़ लोग रोजगार वाले परिवार के दायरे में आ सकते हैं। इसके बाद भी यूपी में 15 करोड़ लोग मुफ्त अनाज, मुफ्त दाल, मुफ्त तेल, मुफ्त नमक पर निर्भर हैं। अगर उद्योग मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह कह रहे हैं कि 2 करोड़ रोजगार दिया है तो कुछ हिसाब भी देना चाहिए। अगर वो हिसाब नहीं दे सकते हैं तो इस बात का ही दे दें कि पहले के बयान में उन्होंने कहा था कि केवल लघु मध्यम सेक्टर में 2.64 करोड़ को रोजगार दिया है। ये उन्हीं का बयान है। ये 64 लाख कहां माइनस हो गया? यह खबर 16 जुलाई 2021 को हिंदू बिजनेस लाइन में छपी है, जिसे 17 जुलाई 2021 को खुद सिद्धार्थनाथ सिंह ने ट्वीट किया था। इसकी हेडलाइन है कि एमएसएमई सेक्टर में 2.60 करोड़ रोजगार दिया गया। मंत्री जी कह रहे हैं कि 4.5 साल में 2.60 करोड़ रोजगार दिया गया है। जुलाई 2021 से जनवरी 2022 के ट्वीट में 60 लाख से अधिक की संख्या कम हो गई। मंत्री जी एक बार फाइनल बता दें कि अंतिम आंकड़ा क्या है, 2 करोड़ का है या 2.60 करोड़ का है? डू यू गेट माई पॉइंट? वाईएसआर पार्टी के सांसद बाला शोवरी वल्लभ सोनी के सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री 20 दिसंबर 2021 को लोकसभा में एक जानकारी देते हैं। इसके अनुसार मुद्रा योजना के तहत 6 साल में 32.11 करोड़ लोन दिए गए। मतलब 32.11 करोड़ खातों में लोन का पैसा गया। कितना पैसा दिया गया तो इसके जवाब में मंत्री बताते हैं कि 17 लाख करोड़ रुपया दिया गया। 32.11 करोड़ लोन खातों में 85% शिशु लोन वाले खाते थे, जिसके तहत 50,000 रुपए से कम का लोन दिया जाता है। यानी ज्यादा से ज्यादा लोगों ने 50,000 से कम के लोन लिए हैं मुद्रा के तहत। आप समझ सकते हैं कि 50,000 रुपया लोन लेने वाला खाएगा क्या, कमाएगा क्या और दूसरों को क्या रोजगार देगा? इस डेटा में भी बहुत कुछ साफ नहीं है जो लोकसभा में दिया गया। जैसे जिनका लोन चल रहा है उन्होंने दोबारा लोन लिया या कितने लोगों ने मुद्रा के तहत पहली बार लोन लिया, इस सवाल को यहां रहने देते हैं। अप्रैल 2015 में यह योजना शुरू हुई थी। मुद्रा योजना के लॉन्च होने के 3rd साल में ही अमित शाह ने दावा कर दिया कि इसके तहत बटे लोन से 7.28 करोड़ स्वरोजगार मिला है। जब यह आंकड़ा आया तब काफी हंगामा मचा कि इतने लोगों को स्वरोजगार कब और कैसे मिल गया, कहां से मिल गया,
कि जॉब क्यों नहीं है। मैं इनका ध्यान इंगित कराना चाहता हूं, मुद्रा बैंक योजना के माध्यम से 7,28,00,000 बेरोजगार गरीब युवाओं को स्वरोजगार देने का काम ये नरेंद्र मोदी सरकार ने।
क्या वाकई उस वक्त 3 साल में मुद्रा योजना लोन से 7,28,00,000 रोजगार मिला था? उस वक्त सरकार के इस दावे को कई लोगों ने ठोस तर्कों के सहारे चुनौती दी थी, लेकिन पिछले साल पीआईबी ने अपनी रिलीज के जरिए साबित कर दिया कि अमित शाह का आंकड़ा बहुत ज्यादा गलत था। 7 अप्रैल 2021 को पीआईबी ने एक प्रेस रिलीज जारी की। पीआईबी सूचना व प्रसारण मंत्रालय के तहत काम करने वाली एक एजेंसी है, तो इसकी जानकारी आधिकारिक मानी जाती है। पीआईबी की रिलीज में बताया जाता है कि 2015 से मार्च 2021 तक 28.68 करोड़ लोन खातों को लोन की मंजूरी दी गई। मतलब इतने लोगों को लोन दिया गया। इन लोगों को कुल कितने पैसे लोन दिए गए तो सरकार ने कहा करीब 15,00,000 करोड़ रुपए लोन दिए गए। इसकी वजह से 2015 से 2018 के बीच 1,12,00,000 अतिरिक्त रोजगार पैदा हुए, जबकि 2017 में अमित शाह कह चुके हैं कि 7,28,00,000 रोजगार पैदा हुए। पीआईबी ने अपनी रिलीज में लिखा है कि मुद्रा योजना के तहत सबको औसतन 52,000 रुपए लोन दिए गए। 88% से अधिक लोन शिशु कैटेगरी के हैं, 50,000 से भी कम के। यही बात सरकार के दावों पर सवाल उठाने वाले कई साल से कर रहे हैं कि इतने कम पैसे में रोजगार पैदा नहीं हो सकता उतना जितना दावा किया जा रहा है। अब वित्त मंत्रालय ने ही साफ कर दिया है कि 2015 से 18 के बीच 1,25,00,000 से भी कम रोजगार पैदा हुआ है। अमित शाह ने 7 गुना ज्यादा बता दिया था। पीआईबी की इस रिलीज में बताया गया है कि जिन लोगों ने लोन लिए हैं उनमें से 24% नए उद्यमी हैं। मतलब ज्यादातर उन लोगों ने लोन लिया जो पहले से कुछ व्यवसाय कर ही रहे थे और 50,000 से कम का लोन लिया। कब और कहां से कौन सी खबर चलकर आती है, जब आप यह पता करेंगे तो पता चलेगा कि आप पता ही करते रह गए और पता भी नहीं चला। अमित शाह को बताना चाहिए कि उनके दावों का क्या हुआ कि मुद्रा लोन से 7,00,00,000 से अधिक को रोजगार मिला है।
देखिए, संरचना कमजोर इस तरीके से है मुद्रा स्कीम की कि बिना कोलैटरल आपको लोन दिया जाता है और इसमें 3 साल में पैसे वापस करने होते, और इसमें 88% जो लोन्स हैं वो शिशु वर्ग में है जो 50,000 रुपए से कम के हैं, और ये जो 50,000 रुपए से कम के जो लोन्स हैं उधार है उसमें औसतन 29,000 से ज्यादा औसतन दिया नहीं गया। अब आप सोचिए स्वयं की संकल्पना कितनी गलत है कि 29,000 में आप एक ठेला खरीद लेंगे, उसको 2-3 बार उसमें फल सब्जी भर लेंगे, वो बेच लेंगे, उसके बाद वो आदमी बेचारा क्या करेगा। दूसरी बात, सरकार ने 2015 में जब इसको चालू किया तो बैंकों को मजबूर किया कि जल्दी पल्दी पैसा दीजिए। एनबीएफसी को भी बैंक मजबूर कर रहे थे और प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर दोनों बैंक। अब जब जल्दी पल्दी में काम होता है तो कार्यान्वयन जाहिर है ढीला होता है। लाखों को उधार तो दिया गया मगर सरकार के डंडे की वजह से जब कायदे से चयन नहीं होता ऐसे लोगों का जिनको लोन दिया जा रहा है तो जाहिर है कि एनपीए बढ़ेगा।
2015 से 18 के बीच मुद्रा योजना से मात्र 1,12,00,000 रोजगार पैदा हुए हैं, और यूपी के मंत्री जी कहते हैं कि उनके राज्य में 5 साल में 2,00,00,000 से अधिक लोगों को केवल उद्योग में रोजगार मिला है। आपने गौर किया होगा कि इतनी सी जानकारी के लिए कितनी छानबीन करनी पड़ी, जबकि बहुत बुनियादी पड़ताल की है हमने। ऐसी जानकारी को रखते समय आपको इस शो से वीडियो वायरल कराने का हिस्सा नहीं मिलेगा। सबको वायरल वीडियो चाहिए। बोलने वाला चमक कर कुछ ऐसा अनाप शनाप बोल दे जिससे ट्विटर से लेकर टीवी तक में बहस छिड़ जाए। यह एक ऐसा रोग है जिसने सभी पक्षों के लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है। फ्लैशबैक में इन हेडलाइन को देखिए, मुद्रा योजना से कितनी नौकरियां मिली हैं इसे लेकर समय समय पर अलग अलग हेडलाइन में अलग अलग नंबर हैं। कहीं 7.28 करोड़ है, कहीं 5.5 करोड़ है, कहीं 6.8 करोड़ है, कहीं 13 करोड़ रोजगार देने का दावा किया गया है। अलग अलग समय में आपको हसीन सपने दिखाने वाली ये हेडलाइनें अब बेवफा साबित हो चुकी हैं। असली आंकड़ा 1,12,00,000 का ही है। क्या उसी तरह से दावा किया गया है कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया गया है? नौकरी पर नेताजी कब बात करेंगे, या नेताजी नौकरी पर भी इतिहास की तरह बात करेंगे? एक को नियुक्ति पत्र देकर कहेंगे सबको नौकरी दे दी, जैसे एक मूर्ति लगाकर बताते हैं इतिहास के नायक को इतिहास में जगह दे दी। इतिहास के नाम पर वर्तमान को इतिहास के गर्त में धकेला जा रहा है। बेहतर अपने आप को बचा लीजिए, ब्रेक ले लीजिए। हिमांशु शेखर मिश्रा पश्चिम उत्तर प्रदेश में हैं और उन्होंने कुछ किसानों से चुनावी राजनीति को लेकर बात की।
मैं इस वक्त मेरठ के सतवाई गांव में हूं और यहां पर मेरे साथ बहुत सारे गांव वाले हैं। इनमें से कई लोग ऐसे हैं जो दिल्ली में भी गए थे, जो नए कृषि कानून है उसके खिलाफ जो दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन हुआ उसमें उन्होंने काफी भाग लिया था। यहां से काफी ज्यादा ट्रैक्टर भी दिल्ली गए थे दिल्ली की सीमाओं में, और यहां पे बहुत सारे लोग हैं, युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। सुरेंद्र सिंह जी, आप कितने समय रहे वहां?
हम 12.5 महीने रहे जी, 18 दिन बल्कि 12 महीने से ऊपर 18 दिन कर दिए थे जी पाए थे। हम तो यहाँ सोच के गए थे पर सरकार ने कोई गलत कह दिया, कानून किसाड़ा के लिया, तो इन्होंने बॉर्डर पर रोक दिए, पूरी फोर्स लगा दी, सारी सड़क पे कील गाड़ दी। हमने सोची बाजी भी आगे नहीं जा रहे, हम यहाँ बॉर्डर पे बैठ गए।
किसानों की बात हो रही है, नौजवानी सरकार से इतना रुष्ट है, इतना बेकार कर दिया। सबसे बड़ा नुकसान जो किया इस प्रदेश में किया, देश में किया, इस भारतीय जनता पार्टी नौजवान का किया।
अगर सरकार नहीं मानती है तो धरना धरेंगे। पहली बात तो सरकार बदल देनी है, अब रहेगी नहीं, और नहीं मानता ये प्रधानमंत्री रहेगा, नहीं मानने का फिर धरना देंगे। जैसे 1 साल 18 दिन रखा, फिर धरना धरना देंगे।